श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले अध्ययन में जुबली वर्ष और विश्राम वर्ष के बारे में देखा था। आज हम अपने अध्ययन को लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 26 अध्याय से आरंभ करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी ओर से इसराइल के लिए इतना सब कुछ किया तो इसराइल का भी कुछ उत्तरदायित्व अवश्य होगा। अतः मेरे मित्रों, परमेश्वर उनके सामने अपनी सरल शर्तें रखता है। यह वास्तव में भविष्य संबंधित बातें हैं। यह एक अति उत्तम अध्याय है जो प्रतिज्ञा के देश में इसराइल के संपूर्ण जीवन काल से आज तक है। इसमें स्वदेश वास की उनकी भावी शर्तें हैं। यह गद्यांश लय व्यवस्था की पुस्तक के शेष भाग के साथ विशेष संबंध रखता है। इसमें आत्मिक शिक्षाएं तो नहीं है, परंतु इसराइल के लिए परमेश्वर का सीधा निर्देशन है। यह उनके इतिहास की पूर्व युक्ति है और इसराइल द्वारा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश एवं इतिहास का आधार है। इस अध्याय में यदि शब्द 9 बार आया है और इसका संबंध प्रतिज्ञा के देश में इसराइल के निवास से संबंधित है। 24 बार परमेश्वर निश्चयतात्मक रूप से कहता है करूंगा, परंतु परमेश्वर की प्रतिक्रिया निर्भर करेगी यदि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश में पहुंचा दिया, परंतु वहां बसे रहना यदि के प्रत्युत्तर में उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। उस देश में बसे रहने के लिए उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए उन्हें आज्ञा पालन करना अवश्य है। यह अध्याय उनके इतिहास का विवरण ही नहीं, उनकी आशीषों का मापक यंत्र भी है। उस देश में बसे रहना, वर्षा प्राप्त करना, विपुल पैदावार उठाना आदि सब परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम होगा। देश में विसर्जन, सूखा, अकाल आदि अवज्ञा का दंड भी होगा। आपको और मुझे मसीह में स्वर्गीय आशीषों की बहुतायता प्राप्त है, परंतु इनके साथ ही यदि लगा हुआ है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप पर आशीषों की वर्षा भी करना चाहता है, परंतु आप अनास्था एवं उदासीनता की छतरी खोलकर खड़े हो सकते हैं। आप पाप की छतरी खोल सकते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर भटक सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका प्रेम आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको अपनी छतरी हटाना होगा कि उसकी आत्मिक आशीषों को आप पा सकें। मित्र, आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। इसराइल द्वारा प्रतिज्ञा के देश के आमुख स्तुति गान, पद 1 और 2। दूसरा, आशीषों की प्रतिज्ञा, पद 3 से 13। तीसरा, दंड की घोषणा, पद 14 से 39। चौथा, पितरों की दी गई प्रतिज्ञा के आधार पर भविष्यवाणी, पद 40 से 46। आइए अब हम देखें इसराइल द्वारा प्रतिज्ञा के देश के आमुख स्तुति गान। लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ये 2 पद 10 आज्ञाओं का प्रथम भाग है, परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध। यह इसराइल द्वारा उस देश में वास करने के लिए अनिवार्य था। उन्हें वह देश दे दिया गया था, परंतु वहां का आनंद लेना और उसमें बसे रहना उनके द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर ही निर्भर करता था। इसमें लिखा है, पहला, प्रतिमा मत बनाना, अर्थात मूर्ति मत बनाना। मूर्ति के लिए जो इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एलियम। उसका अर्थ है निराकार। निराकार का बनाना असंभव है, फिर भी आज अनेक मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को निराकार बनाते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर के स्थान पर लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु निराकार, अर्थात कुछ भी नहीं है। गढ़ी हुई मूर्तों के लिए काम में लिए गए शब्द से अभिप्राय है, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति से अभिप्राय है, नक्काशी की हुई प्रतिमा। उन्हें मूर्ति पूजा ही नहीं, मूर्तियों के समक्ष आराधना करना भी वर्जित था। यह लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 30 का पुनरावलोकन है। दूसरा हम पाते हैं शब्द का दिन मानना और तीसरा पवित्र स्थान का सम्मान करना। शब्द का दिन, पवित्र स्थान और परमेश्वर की आराधना एक ही विधि है। इन आदेशों का पालन यहोवा के गुणों पर आधारित है। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। हम आगे देखते हैं आशीषों की प्रतिज्ञा। लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 3-6 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं यदि से आरंभ हो रहा है। यदि वे परमेश्वर के निर्देशों के अनुकूल आचरण करेंगे तो परमेश्वर से आशीष पाएंगे, अर्थात सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने पर ही निर्भर करता है। परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उनकी स्वेच्छा का दमन नहीं कर रहा है, परमेश्वर चुनाव उनके हाथों में छोड़ रहा है। यदि तुम ऐसा करोगे, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि उस देश में परमेश्वर की आशीष का मुख्य प्रमाण यथा समय वर्षा होना है। व्यवस्था विवरण और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी यही मुख्य विषय है। परमेश्वर ने यजकेल के मुख से उन्हें अपना वचन दिया। अध्याय 34 उसके 26 में हम पढ़ते हैं, मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। भविष्यवक्ता इसराइल में इस प्रतिज्ञा की पूर्ति की बाट जोहते थे। यह एक भावी समय होगा। भविष्यवक्ता योएल की भविष्यवाणी थी जिसे हम दूसरा अध्याय उसके 23-24 पद में पाते हैं, हे सियोन तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली की वर्षा को भी बरसाएगा, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वे उस देश में बसे रहेंगे, उन्हें सही समय पर वर्षा प्राप्त होगी, भूमि का फल प्राप्त होगा और उनके देश में शांति बनी रहेगी। यह बड़ी विचित्र बात है कि यह राष्ट्र आज शांति से वंचित है। उन पर उंगली उठाना हमारे लिए उचित नहीं क्योंकि शेष संसार में भी शांति कहाँ है। सब कुछ एक छोटे से शब्द यदि पर निर्भर है। यदि वे कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। हम लय व्यवस्था 26 उसके 7-8 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वैरियों पर विजय की आशीषें। यह प्रतिज्ञा तो अनेक बार साक्षात पूरी हुई जब इसराइल ने परमेश्वर को खोजा था। परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया, दाऊद को खड़ा किया, दबोरा, गिदोन और एलिया को भी खड़ा किया। यह सब इसलिए संभव हुआ कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता था। हम यहोशू की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसके 10 पद में पाते हैं, तुम में से 1 मनुष्य 1,000 मनुष्यों को भगाएगा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। तब हम लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 9-10 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसराइल की जनसंख्या में वृद्धि भी प्रतिज्ञा की ही आशीष थी। आज का संसार तो जनसंख्या वृद्धि को कभी आशीष नहीं मानता है। उनके लिए जनसंख्या वृद्धि भोजन की समस्या का कारण नहीं था क्योंकि उनके खाद्य पदार्थ भी आशीष स्वरूप विपुल थे और उन्हें अनाज के भंडार हेतु पुराना माल निकालने पर विवश होना पड़ता था। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 26 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। आप यह न कहें कि परमेश्वर पाप से घृणा नहीं करता है। निसंदेह वह पाप से घृणा करता है। वह आपके और मेरे जीवन में पाप से समझौता कभी नहीं करता है। उनके मध्य मिलाप वाला तंबू आशीष का प्रमाण था। यह भविष्य की एक महान आशा है जो अनंतकालीन पृथ्वी के लिए पूरी होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 में भावी चित्रण दिया गया है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। लय व्यवस्था 26 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मित्रों, परमेश्वर आज्ञा मानने वालों के साथ सहभागिता करने की प्रतिज्ञा करता है। आज भी वह हमसे यही प्रतिज्ञा करता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसे हम पहला यूहन्ना 1:7 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों के पत्र 6:16 पद में कलीसिया को लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 26:13 पद में लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकालने आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। प्रिय मित्र, आशीषों की भावी प्रतिज्ञा उनके अतीत के दृढ़ इतिहास पर आधारित है। जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से मुक्त कराया था, वह उनसे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने पूर्व समय में तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया और भविष्य में भी करूंगा। वह हमसे भी यही कहता है। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया में लिखा है, फिलिपियों 1:6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप में यह विश्वास होना है कि वह आपको यहां तक लाया है तो वह आपको प्रभु यीशु के दिन तक भी लेकर चलेगा। मैं कह सकता हूं हालेलुया। अब आइए देखते हैं दंड की आज्ञा। लय व्यवस्था की पुस्तक 26:14-15 पद में लिखा है, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। यहाँ पर इन दो पदों में परमेश्वर 3 शर्तों को रखता है जो वाचा के उल्लंघन से संबंधित है, सुनने से इनकार, करने से इनकार, परमेश्वर के आदेशों का तिरस्कार एवं अवज्ञा और दंड। परमेश्वर की वाचा तोड़ने का दंड प्रजा एवं देश दोनों को मिलता था। लय व्यवस्था की पुस्तक 26:16-17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरोध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे वैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। यहाँ पर यह प्रथम श्रेणी का दंड है, आतंक, आगजनी, मलेरिया अर्थात डेंगू, दुख दर्द, फसल का नाश आदि। उनके बैरे उनका नाश करेंगे, उन्हें दास बनाएंगे, उन्हें भयभीत करेंगे। उनके दुखद एवं कठिन इतिहास में ऐसा हुआ है। हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का क्रोध इसराइल पर भड़का और उसने उन्हें लुटेरे राष्ट्रों के हाथों में कर दिया जिन्होंने उन्हें पूर्ण रूपेण लूटा। न्यायों की पुस्तक 2:14, 3:8-4:2 में हम देख सकते हैं। भविष्यवक्ताओं का मुख्य संदेश क्या था? उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा तोड़ी थी। हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5:17 में परमेश्वर की चेतावनी को पाते हैं। लिखा है, तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारे भेड़ बकरी और गाय बैलों को खा डालेंगे और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नाश कर देंगे। तब हम आगे लय व्यवस्था 26:18-20 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरे न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा और तुम्हारा बल अकारात गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। मित्रों, यह द्वितीय श्रेणी का दंड है। यदि वे फिर से हठीले बने रहे तो परमेश्वर उन्हें 7 गुना दंड देगा, जो पूरा और अंतिम दंड होगा। न तो वर्षा होगी और न ही फसल उगेगी। आगे हम लय व्यवस्था 26 उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं, और यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। प्रिय मित्र, यह तृतीय श्रेणी का दंड था। महामारी और वन पशुओं के प्रलय से उनका नाश होगा। यह सब उनके साथ यथार्थ में हुआ भी। न्यायों की पुस्तक में पढ़िए कि मुख्य मार्ग खाली रहने पर भी उन्हें दूसरे रास्तों में आवागमन करना पड़ता था। मनुष्य ने प्रकृति पर अपनी प्रभुता खो दी। हम लय व्यवस्था 26 अध्याय उसके 23 से 26 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे, और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। यह चतुर्थ श्रेणी का दंड है। यहाँ 7 की संख्या फिर से दोहराई गई है, जिसका अर्थ है परिपूर्णता। वैरी उनकी सहरपनाह को ढा देंगे और महामारी उनको सर्वनाश करेगी, तथा अंतिम परिणाम होगा कि वे बंदी बनाए जाएंगे। यजकेल ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी जनसंख्या का तिहाई भाग महामारी और अकाल से नाश होगा, एक तिहाई जनसंख्या तलवार से नाश होगी और एक तिहाई भाग अन्य स्थानों में विसर्जित हो जाएगी। यजकेल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद में हम पाते हैं, यशाया, यर्मिया, यजकेल सबने आने वाले अकाल की चेतावनी दी थी और ठीक वैसा ही हुआ। मेरे मित्र, यह महाक्लेश के समय भी होगा, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा है। हम आगे लय व्यवस्था की पुस्तक 26 उसके 27 से 29 पद में पढ़ते हैं, फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। यह अत्यधिक कठोर दंड है और आशा यही की जाती है कि ऐसा ना हो, परंतु ऐसा इतिहास में उनके साथ हुआ। लय व्यवस्था 26:30 से 33 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। प्रिय मित्र, यह दंड की 5वीं श्रेणी है जो अति भयंकर है। यह नगर के घेराव और युद्ध का परिणाम है। यह सामरिया के घेर लिए जाने के समय हुआ था। दूसरा राजा की पुस्तक 6 अध्याय 28 और 29 पद में हम पाते हैं, और बेबीलोन की सेना द्वारा यरूशलेम का घेराव किए जाने के समय भी यही घटना घटी थी। विलाप गीत 2 अध्याय उसके 20 पद और 4 अध्याय के 10 पद में हम पाते हैं, सन 70 में जब रोमी सम्राट तीतुस ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तब भी यही स्थिति थी। पद 33 उस देश का चित्रण है जो आज 1900 वर्षों से स्थित है। परमेश्वर ने जो कह दिया है उसे वह अवश्य पूरा करता है। लय व्यवस्था 26 उसके 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। मित्रों, बेबीलोन के दासत्व में जाने के कारण यही थे। 490 वर्ष इसराइल ने भूमि को विश्राम नहीं दिया था और 490 वर्ष में 70 वर्ष विश्राम के होते हैं। वे सोचते थे कि परमेश्वर नहीं देखता है, परंतु अंत में परमेश्वर ने कहा कि यदि वे भूमि को विश्राम नहीं देंगे तो वह उसके विश्राम की व्यवस्था अवश्य करेगा और उन्हें 70 वर्ष के लिए देश से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का गणित कैसा सही है। यही कारण था कि वे 70 वर्ष बाबुल की गुलामी में अर्थात दासत्व में रहे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 21 पद में हम इसे पाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 36 से 39 पद में। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। और जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। प्रिय मित्र, बेबुलून के दासत्व से आज तक यह यहूदियों की नियति रही है। उन पर यहूदी विरोध का प्रकोप लगातार पड़ता ही रहा है। नाजियों का यहूदी विरोध विशेष करके ध्यान देने योग्य है। आप स्वयं देख सकते हैं कि लय व्यवस्था की पुस्तक यथातिथि कैसे सटीक है। पितरों को दी गई प्रतिज्ञा के आधार पर भविष्यवाणी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। लय व्यवस्था 26 उसके 40 से 42 पद को पढ़ते हैं। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरोध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरोध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। यहाँ पर इसराइल के अतीत के अपराध देश पर उनके स्वामित्व का खंडन नहीं करते हैं। यह एक विशेष भविष्यवाणी है जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वह आने वाले समय में पूरी करेगा। परमेश्वर अब्राहम और अन्य पितरों के साथ बांधी अपनी वाचा के कारण इसराइल का पूर्ण विनाश कभी नहीं करेगा। हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा कि जब इसराइल मिस्र देश में था तब परमेश्वर उनकी चिल्लाहट सुनता था और उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी वाचा का स्मरण होता था। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से मुक्ति दिलाई। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम इसे पाते हैं। अब परमेश्वर कहता है कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे उस देश में वास करेंगे, यदि नहीं तो वे वहां से विस्थापित किए जाएंगे। और यदि वे परदेश में अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएंगे तो वह उन्हें अपने देश में लौटा लाएगा। दानियल बाबुल के देश में भी परमेश्वर की ही उपासना करता था। वह यरूशलेम की ओर मुख करके अपने और अपने लोगों के पापों का अंगीकार करता था और परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और एक संदेशवाहक उसके पास भेजा कि उसे और उसकी प्रजा के स्वदेश पलायन का शुभ संदेश उसे सुनाए। वे अवश्य ही अपने देश लौटे। मेरे मित्र, परमेश्वर के पास इस राष्ट्र के लिए अब भी एक भावी योजना है जिसका निराकरण उनके अतीत के पापों द्वारा कभी नहीं होगा। देखिए रोमियों की पत्री 11 अध्याय 1 से 25 और यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय 31 से 34 पद में। हम आगे बढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 43 और 44 पद में लिखा हुआ है, और वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपने उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक अति उत्तम संदर्भ है। क्या आप इस गद्यांश को पढ़ने के बाद कहेंगे कि परमेश्वर का संबंध इसराइल से समाप्त हो गया है? यदि आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का संबंध इसराइल से सदा के लिए समाप्त हो गया है। हम लय व्यवस्था 26 उसके 45 और 46 पद में पढ़ते हैं, परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, मैं यहोवा हूं। जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इसराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे ये ही हैं। प्रिय मित्र, फिलिस्तीन पर उनके कारण जो श्राप आया वह ठीक वैसा ही था जैसा आदम के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर आया था, परंतु उनके पितरों को दी गई प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा और प्रतिज्ञा के अनुसार सब आशीषें देगा। हम लय व्यवस्था में निहित आदेशों के अंत में आ गए हैं और परमेश्वर मूसा को दी गई व्यवस्था की पुष्टि करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद इस पुस्तक का अंतिम पद है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। परमेश्वर युगों को पार कर उनकी विफलताओं की अपनी विश्वास योग्यताओं को और अंतिम विजय को निहारता है। मूसा मध्यस्थ होते हुए भी अनंत आशीषों में उन्हें नहीं ला पाया। संसार को अन्य मध्यस्थता की प्रतीक्षा थी, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा ही दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17 पद में हम इसे पाते हैं। प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और ये मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे, मुंह को मेरे, मसा कर यसु, मसा कर, मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, हाथों सा।